हमारे बीच आज गौरव भाई हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। गौरव भाई पंचकुला से हैं और 20 साल से ज्ञान में हैं और पहले कॉलेज में पढ़ाते थे, अभी एक पंचकुला में एक एड एजेंसी है, वहां मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ पूरे भारत में स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कराते हैं। तो आज हम गौरव भाई से उनका टॉपिक है साइंस ऑफ सक्सेस, इस पर सुनेंगे। गौरव भाई
ओम शांति, एक बार दिल से ताकत से बोलेंगे ओम शांति, आंखें बंद करके बोलेंगे ओम शांति। शुक्रिया। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है जिसका टॉपिक है साइंस ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का विज्ञान, सफलता के पीछे की कहानी। आज हर कोई व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या वो स्पोर्ट्स पर्सन हो। स्टूडेंट पढ़ाई में सफलता चाहता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, और खिलाड़ी खेल के अंदर सफलता चाहता है। जैसे हर कार्य को करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं, ऐसे ही सफलता प्राप्त करने के लिए भी कुछ टिप्स हैं। हम उन टिप्स को जानेंगे आज और उनको लाइफ में अपनाने की कोशिश करेंगे। कुछ भाई पीछे बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि प्लीज अगर आगे आ सकते हैं तो प्लीज आगे आएं। सक्सेस, एस मीन्स सी योर गोल, अपने लक्ष्य को देखें। सक्सेस एस यू अंडरस्टैंड द राइट एटीट्यूड, कि सही दृष्टिकोण क्या है। सी कट ऑल बैरियर्स, एस यू डबल सी, एंड दिस इज क्रिएट पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। नेक्स्ट इज ई एनहांस योर पावर। नेक्स्ट इज स्टिक टू रेगुलर प्रैक्टिस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ रियलाइजेशन। ये बन जाता है एस यू डबल सी डबल एस, दैट इज सक्सेस, सफलता। तो सबसे पहले लेते हैं हम सी योर गोल, यानी कि अपने लक्ष्य को देखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। यदि हम इतिहास की बात करें, इतिहास के अंदर एक कहानी जो हमें इस बात पर ले जाती है, श्री द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को कहा कि सामने बैठे बाज की आंख पर निशाना लगाएं, और जब बारी बारी से सबने तीर कमान को उठाया तो श्री द्रोणाचार्य ने अपने हर शिष्य से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ एक शिष्य को छोड़कर बाकी सबने ये कहा कि बाज की आंख, पेड़ पत्ते, हमें सब दिखाई दे रहा है, लेकिन एक शिष्य उनका ऐसा जिसने ये कहा कि मुझे निशाना लगाते हुए केवल बाज की आंख दिख रही है। कौन था जी वो? अर्जुन। और वहीं से सिर्फ इतना कहते ही द्रोणाचार्य को यकीन हो गया यही वो शिष्य है जो दुनिया का सर्वोत्तम धनुधर बन सकता है। क्योंकि जब ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे होगा तो पूरी ऊर्जा हमें उस लक्ष्य की तरफ ले जाती है, और बहुत जरूरी है हमारे लिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखें। और विज्ञान ये कहता है जब एक ड्राइवर का ध्यान रोड से हटता है एक्सीडेंट होता है, और 80% एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए होते हैं कि ड्राइवर का ध्यान रोड से हटता है। इसलिए हमेशा हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पे रहना चाहिए। और यदि शाम को काम करने के बाद, खूब मेहनत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद एक खिलाड़ी सोता है और सुबह फिर से उसे मालूम है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, 4 बजे का अलार्म भी लगाया, अलार्म बजने के बाद जब वो उठता है मन करता है कि शरीर थका हुआ है सो जाऊं, लेकिन अगर वो लक्ष्य को याद करता है कि नहीं मेरा लक्ष्य है मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो क्या होगा उसके बाद? जैसे ही 4 बजे अपने लक्ष्य को याद करेगा कि मुझे उस एम तक पहुंचना है, क्या हो जाएगा? वो उठ जाएगा, ताकत पैदा करता है। जैसे लक्ष्य पर ध्यान जाता है एक शरीर में ताकत पैदा होती है। इसलिए ये आपसे निवेदन रहेगा कि सुबह उठकर जरूर, सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को जरूर देखें और शाम को सोने से पहले भी अपने लक्ष्य को जरूर देखें, मुझे जिंदगी में कहां जाना है, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। ऐसा करने से आवर एनर्जी गेट्स फोकस्ड, एनर्जी गेट्स फोकस्ड। इसके ऊपर मुझे बहुत ही कहानी यहां पर याद आती है फ्लोरेंस जेडविक की। ये दुनिया की सर्वोत्तम महानतम स्विमर रही हैं। ये वो महान लेडी हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल, आप जानते होंगे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच के समुद्र को इंग्लिश चैनल कहते हैं, उस चैनल को इन्होंने तैर कर पार किया दोनों तरफ से, इंग्लैंड से फ्रांस और फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। और उसके बाद 1952 के अंदर इन्होंने कैटलिना चैनल, कैलिफोर्निया और कैटलिना आइलैंड के बीच के चैनल को कहते हैं कैटलिना चैनल, उसको पार करने की कोशिश की, उसको सोचा पार करने का। अपने साथ 3-4 लाइफ बोट्स ली, प्लानिंग की, और ये चैनल 26 मील लंबा है कैटलिना चैनल, तैर कर उसको पार करने का प्लान किया 3-4 लाइफ बोट के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, लाइफ गार्ड के साथ समुन्द्र में उतर गए और तैरना शुरू किया। 15 घंटे तैरने के बाद आसपास समुन्द्र के चारों तरफ आसमान के अंदर धुंध छाने लगी, आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था, जो लक्ष्य था वो भी नहीं दिख रहा था, जो किनारा था कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसके करीब एक घंटा और तैरने के बाद मन में डाउट आ गया, मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मालूम नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। इन्होंने अपनी मां को कहा जो साथ में बोट में चल रही बोट में थी कि मैं और आगे नहीं तैर सकती, मुझे लगता है मैं थक गई हूं। ये उठकर स्विमिंग छोड़कर बोट में आ गई और कुछ देर के बाद इन्हें ये मालूम पड़ा इतनी देर तैर आई मैं 25 मील तैर चुकी थी, सिर्फ लक्ष्य कितना दूर था 1 मील। क्यों हिम्मत हार गई, ये क्यों लगा कि मैं नहीं कर सकती, क्या बात दिमाग में आई? सिर्फ क्यों, क्योंकि लक्ष्य नहीं दिख रहा था, धुंध के कारण लक्ष्य नहीं दिख रहा था। जब तक लक्ष्य दिखता है अंदर ताकत रहती है। यदि एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा थकते हैं और साथ वाला कहता है चोटी तो सामने ही है अभी पहुंच जाएंगे, तो क्या होता है जी, तो क्या होता है, फिर से ताकत आती है कि नजदीक है हम जा सकते हैं। यदि नहीं दिख रहा है तो ऊर्जा एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे जाने के लिए क्या बहुत जरूरी है, लक्ष्य पर ध्यान देना। लक्ष्य हमारे सामने है, हमारी ऊर्जा लक्ष्य पर लगती है। इसके साथ एक और अच्छी कहानी मुझे याद आती है, मैं पूरी करता हूं उस बात को, पूरी बात करता हूं मैं। उसके बाद 2 महीने के बाद उन्होंने फिर से प्लान किया मैं उस समुन्द्र को तैर के पार करूं। 2 महीने के बाद फिर से 4 लाइफ बोट्स ली, समुन्द्र में तैरना शुरू किया। और अब उन्हें मेंटल पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी, लॉरेंस चैडविक की बात कर रहा हूं मैं, फ्लोरेंस चैडविक की, उनको लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, उन्होंने तैरना शुरू किया। और अब फिर से 15-16 घंटे के बाद आसपास धुंध छानी शुरू हो गई, लेकिन अब पिक्चर क्लियर थी, दिख नहीं रहा था धुंध के बावजूद भी, लेकिन मन में पिक्चर क्लियर थी। और वो तैरते हुए 26 मील की दूरी उन्होंने तैर कर पार की और दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने कैटलिना चैनल के 26 मील को तैर कर पार किया। हम ताली बजाएंगे उस महान लेडी के लिए, फ्लोरेंस चैडविक। 26 मील इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो उन्होंने तैर कर पार किया। और एक और अच्छी कहानी मुझे याद आती है, एक भेड़िया एक खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, खरगोश भागकर एक मांद में छुप गया, भेड़िया उसके पास आकर बैठ गया, पीछे से कुछ और भेड़िए आए वो भी इस भेड़िए के पास आके बैठ गए कि ये भेड़िया इस मांद के पास बैठा है कोई बात है, पीछे वाले कुछ भेड़िए वहां बैठे रहे। करीब आधा पौना घंटा बैठे रहने के बाद जो पीछे वाले भेड़िए थे वो उठकर चले गए, लेकिन एक भेड़िया वहां बैठा रहा, कौन सा भेड़िया, कौन सा वाला, वो क्यों बैठा रहा वहां पर, क्योंकि उसने खरगोश को मांद में जाते हुए देखा, उसको लक्ष्य क्लियर था और वो वहां 5 घंटे भी वहां बैठ सकता है, लेकिन जिसने लक्ष्य को नहीं देखा वो थोड़ी देर में चला जाएगा। इसलिए हमें जिंदगी में आगे जाने के लिए इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि लक्ष्य मेरी आंखों के सामने रहे। तो एक शेर मुझे 4 लाइनें याद आती हैं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बोलें, शेयर करें। तैयार है मेरे साथ बोलने के लिए, शेयर करने के लिए जी? हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत तुम्हारी है, हर जीत तुम्हारी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाहों में रखो, अपनी निगाहों में रखो। थैंक यू। और एक छोटा बहुत सुंदर वीडियो जिसमें यह दिखाया है, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर वीडियो है ये। एक व्यक्ति निशाना लगा रहा है, अर्थात हर चीज को हासिल किया जा सकता है। एक पतले सी पाइप के अंदर एक तीर भी जा सकता है, बशर्ते ध्यान लक्ष्य पर रहे। और जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा तो मुझे यहाँ पर आने के बाद ये सुंदर लक्ष्य बताया गया कि नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए और नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए। हम में से कौन कौन है जो ये चाहते हैं कि घर का माहौल स्वर्ग जैसा बन जाए? कौन कौन चाहते हैं घर का माहौल? सभी चाहते हैं जी। तो घर का माहौल स्वर्ग जैसा कैसे बनेगा? क्या वहां पे अगर सामान सोने का हो जाएगा उससे स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा, या रहने वाले लोग देवताओं जैसे बन जाए तो स्वर्ग का जैसा माहौल बनेगा? बस रहने वाले लोग कैसे बन जाए? देवताओं जैसे। तो मुझे लक्ष्य दिया गया घर का माहौल अच्छा बनाना है तो अपने को देवताओं जैसा बना लें। एक और बात, हम में से कौन कौन ये चाहते हैं कि घर में बेटी बड़ी होकर लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी जैसी हो और बेटा नारायण जैसा हो? कौन कौन ये चाहते हैं जी? सभी चाहते हैं। बहुत अच्छा, भाई जी ने बताया। अच्छा जी, क्या बात है, ताली बजाएंगे जी, बहुत बढ़िया है। ये चाहते हैं बच्चे अभी ज्ञान में आ जाएं, क्योंकि जिसको ज्ञान का पता लगा है वो चाहता है कि ये नॉलेज भगवान हर बच्चे को दे। तो एक बात, बच्चा अपने सिस्टम के अंदर जब बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा चीजें बातें कहां से सीखता है? क्या अपने पेरेंट्स से, स्कूल से या दोस्तों से? सबसे ज्यादा कहां से सीखता है बच्चा? सबसे ज्यादा बातें अपने माता पिता से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम चाहते हैं कि बेटा नारायण जैसा बने तो उसको नारायण बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करे पिता? पिता क्या करे? खुद बन जाएगा तो बेटा अपने आप फॉलो करेगा। अगर माँ चाहती है कि बेटी लक्ष्मी बन जाए तो माँ क्या करे? खुद लक्ष्मी जैसी बन जाए, बेटी अपने आप बन जाए, उनको बदलने की जरूरत नहीं है, सिस्टम यही कहता है। तो यहां हमें यही सिखाया गया कि अपने आप को बदलें, स्वयं को परिवर्तन करें। और आप किसी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएंगे आपको ये लक्ष्य अवश्य दिखाया जाएगा कि अपने जीवन को ऐसा बनाना है। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द राइट एटीट्यूड, कि सही दृष्टिकोण को समझें। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आती है, एक ऑफिसर उसके मैनेजर ने उनको कहा कि आपको कल बॉम्बे जाना है, दिल्ली में उनका ऑफिस था, आपको कल जाना है, कैसे जाइए, चाहे बाय एयर जाए बाय ट्रेन जाए, इट्स अप टू यू, लेकिन कल आपको बॉम्बे जरूरी पहुंचकर ये मैटर वहां पे डिलीवर करना है। अब उन्होंने बाय, इनको एयर टिकट नहीं मिला, बाय ट्रेन टिकट मिला, वो भी वेटिंग मिला। जब ट्रेन में पहुंचे, ट्रेन में बैठे, टीटी ने कहा कि आपका टिकट वेटिंग है, आप अंदर नहीं बैठ सकते हैं, आपको बाहर बैठना पड़ेगा। आप सफर भले कर सकते हैं लेकिन बाहर बैठना पड़ेगा। वो भाई मजबूर बाहर सीढ़ियों में बैठकर वो ट्रेन के अंदर सफर कर रहा है। जो एक अच्छी पोस्ट पे व्यक्ति, अच्छा कमाने वाला, और उसे बाहर ट्रेन की बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सफर करना पड़े, मन की स्थिति कैसी होगी? क्या मन में उस वक्त चल रहा होगा? क्या चल रहा होगा मन के अंदर? द्वंद्व चल रहा होगा। उस भाई के मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर सारे काम मुझे ही कहता है और मैं कभी उनको ना नहीं करता, मुझे उनको इस बार ना कर देनी चाहिए थी। और कोई काम नहीं करता, सारे डिपार्टमेंट के अंदर मैं ही काम करता हूं, मुझे ही काम कहा जाता है और मैं ही परेशान होता हूं, इसे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं काम करता हूं मैं ना नहीं करता इसलिए मुझे काम देते हैं। इस तरह की सैकड़ों बातें मन में चल रही थी। इतने में उनके घर से वाइफ का फोन आया। वाइफ ने पूछा, कैसे हैं? आपको सीट मिल गई? क्या आपने खाना खा लिया? क्या आराम से हैं? क्या कहा होगा इस भाई ने, जो उस वक्त दुविधा में सैकड़ों विचार मन में चल रहे हैं, ट्रेन की सीढ़ी पर बैठा, क्या कहा होगा उस भाई ने? क्या कहा होगा जी? गुस्सा किया होगा। अलग अलग आप बताइए, अलग अलग यूज क्या क्या गुस्सा किया होगा, और क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया जी। और आप क्या है? बहुत बढ़िया। वो क्यों कहेंगे मैं बहुत बढ़िया हूं? क्यों कहेंगे? अगर कहेंगे बहुत बढ़िया हूं, ताकि घर पर वाइफ परेशान ना हो। उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत बढ़िया हूं, मैंने खाना खा लिया है, मुझे बहुत अच्छी सीट मिल गई है, तुम सो जाओ, बच्चों को खाना खिला दो, बिल्कुल चिंता नहीं करूं, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक हूं। वाइफ समझ गई बिल्कुल ठीक है, वाइफ ने फोन कट कर दिया। अब वो भाई ये सोच रहे हैं कि जब मैंने अच्छी अच्छी बात बोलकर अपनी वाइफ को खुश कर दिया, उसको संतुष्ट कर दिया, तो मैं खुद को संतुष्ट नहीं कर सकता, खुद को खुश नहीं कर सकता। अब उन्होंने सही सोचना शुरू किया। अब ये सोच रहे हैं कि देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी सीट होती थी अंदर, लेकिन मेरा दिल करता था कि मैं यहां खड़ा हूं, सीढ़ी पर खड़ा हो जाऊं, और अब भगवान मेरे को खुद कहां ले आया है, इन सीढ़ियों पर ले आया है। कि कॉलेज का वक्त याद आ गया और एंजॉय कर रहे हैं, चलती ट्रेन को एंजॉय कर रहे हैं, बिल्डिंग सामने मूव करती दिख रही है उनको, पेड़ चलते हुए दिख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। वो कह रहे हैं, वाह क्या बढ़िया वक्त चल रहा है, क्या बढ़िया मौसम है, आनंद आ रहा है। और आधे घंटे बाद टीटी आ गया। टीटी ने कहा, भैया जिसने आना था वो नहीं आया, सीट चाहिए? टीटी भी आ गया। देखिए कितना वंडरफुल, जो बाहर सीढ़ी पे वक्त गुजरा वो भी अच्छा हुआ, टीटी आ गया, उनको अंदर सीट भी मिल गई। यानी क्या करना है, हमने किसको बदलना है? सोच को बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है। चीजें वही रहेंगी, चीजें नहीं बदलेंगी, सबके लिए चीजें ऐसी ही हैं, लेकिन हमें बदलना तो केवल अपने दृष्टिकोण को, अपने सोच को। अब देखते हैं सही एटीट्यूड क्या है। द वेरी इंपॉर्टेंट इज लर्निंग एटीट्यूड। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। यदि एक व्यक्ति 10 साल मेहनत करके एक पद पर पहुंचा है और कोई एक और व्यक्ति 3-4 साल मेहनत करके उससे ज्यादा पद ले लेता है, तो पहले वाले के मन में क्या आएगा? ये संभाविक कि उसको ईर्ष्या आएगी। लेकिन इंटेलिजेंट खिलाड़ी क्या करता है? जो मुझसे आगे गया है उसकी क्वालिटीज को लेगा और वो क्वालिटीज अपने अंदर भर लेगा, और कुछ समय बाद क्या होगा, जो पहले वाला खिलाड़ी है वो दूसरे वाले से आगे निकल जाएगा। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द इंटेलिजेंट स्पोर्ट्स पर्सन। एक छोटी सी बात, एक व्यक्ति ने एक दुकान में काम करना शुरू किया, दुकान खोली, दुकान में बिजनेस करना शुरू किया, काम अच्छा चलना शुरू हो गया। कुछ समय बाद वैसी ही दुकान पड़ोस में किसी ने खोली, उसने वैसा काम करना शुरू किया, उनका बिजनेस भी चल पड़ा, पड़ोसी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया, बिजनेस बड़ा हो गया, उसने बड़ी दुकान ले ली। अब पहले वाले के पास दो ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है जी? या तो पड़ोसी को देखकर जलता रहे, या उसको उससे सीखकर वैसा ही उससे बेहतर खुद करना शुरू कर दे। क्या करना चाहिए? सभी जानते हैं जी, सेकंड ऑप्शन, उससे सीखकर खुद के अंदर चेंज लाकर, उसने ऐसा ही किया, उससे सीखकर उसकी क्वालिटीज उठा ली और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पड़ोसी ने और बड़ा शोरूम खोल लिया, बहुत बड़ा, उसको देखकर इसने उसकी और क्वालिटी उठाकर और बड़ा शोरूम खोल लिया और दोनों लगभग बराबर के लेवल पर चल रहे थे। एक दिन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसके बच्चे ने यह कहा, पिताजी अगर ये पड़ोसी नहीं होता, क्या कहा, अगर ये पड़ोसी नहीं होता तो हम आज भी छोटी सी दुकान में ही काम कर रहे होते, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से उसने तरक्की की, उसको देखकर हमने भी तरक्की करनी शुरू की। ये है आगे बढ़ते हुए लोगों को देखकर आगे बढ़ना, ना कि उनसे जलसी करना। जलसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका एक और नाम भी है जलसी का, जलन। क्या कहते हैं जी, जलन यानी कि जल रहे हैं ना, कुछ नहीं हासिल हो रहा, खुद को जला रहे हैं, जितना जलसी कर रहे हैं खुद का खून जल रहा है। इसलिए भगवान कहता है, ये भगवान ने सिखाया कि जो आगे बढ़ रहा है उसको देखकर आगे बढ़ने की प्लानिंग करें, ना कि उससे। तो क्या करेंगे आज से हम सभी स्पोर्ट्स पर्सन, क्या याद रखेंगे, जलसी आज से खत्म, सिर्फ जो आगे बढ़ रहा है उसको देखकर उसकी क्वालिटी उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं इसके लिए जी, रेडी? यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक छोटा सा सुंदर वीडियो शिवखेड़ा जी का।
ईर्ष्या द्वेष किसे कहते हैं, लोग अपने दुख से इतना तंग नहीं है जितना दूसरे के सुख से तंग है। लोग अपने आप को उठाना नहीं चाहते बल्कि दूसरे को गिराना चाहते हैं। जिनमें ईर्ष्या होती है ऐसे लोग छुप के नुकसान पहुंचाते हैं और फिर सामने आके सहानुभूति जताते हैं। दूसरी चीज, भाग्यवादी नजरिया। अक्सर सुनते हैं समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, जो भाग्य में लिखा है तो रोक नहीं सकता, और अगर नहीं लिखा तो आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए आपको मिल नहीं सकता। जब हम इस दुनिया में आते हैं मस्तिष्क पे सभी कुछ लिखा के लाते हैं, हम क्या हैं, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं अखबार में वैसे लोग इश्तियार भी देते हैं। निराशा को आशा में बदल लीजिए। आपको तकलीफ हो रही है, घर में झगड़ा हो रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, 151 रुपए भेजिए, 24 घंटे में रिजल्ट लीजिए। भाग्यवादी लोग जिंदगी में कुछ करके नहीं जाते बल्कि कुछ होने का इंतजार करते हैं। जिसने जिंदगी में कुछ करना है वो हर हाल में करके चला जाता है, और जिसने कुछ नहीं करना उसे आप सब कुछ दे दीजिए वो फिर भी नहीं करेगा।
द नेक्स्ट इज सपोर्टिंग एटीट्यूड, समर्पण, सहयोग का दृष्टिकोण। यद सर बाद में सेशन के बाद एक बहुत अच्छी बात, यदि किसी खिलाड़ी से मैच के दौरान कैच छूट जाए तो ऊर्जा कैसी हो जाएगी, एनर्जी लेवल कैसा हो जाएगा खिलाड़ी का, हायर या लोअर? लोअर। और पीछे से कैप्टन आकर कह दे साथ में एक प्लेयर और खड़ा कर दूं आपके लिए अगर आपसे कैच नहीं हो रही है, तो सोचिए एनर्जी लेवल कैसा हो जाएगा सुनने के बाद, बिल्कुल शून्य है। उस वक्त क्या चाहिए होता है, जो इस खिलाड़ी से कैच छूट गई है, यदि मान लीजिए किसी गोल कीपर से गोल रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गोल हो जाता है, गोल रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने वाले बहुत जोर से हिट किया गोल हो गया, और पीछे से कैप्टन आगे कहता है साथ में एक जाली लगवा दें ताकि गोल ना हो सके। सोचिए जब गोल हुआ उसके बाद एनर्जी लेवल कम हो जाता है और बाद में कैप्टन आकर कुछ कहे तो एनर्जी लेवल कैसा हो जाएगा, बिल्कुल शून्य है। क्या अब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अब परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी सुनने के बाद, और लो हो जाएगी। उस वक्त यदि कैच मिस हो जाए या गोलकीपर से गोल को रोक नहीं पाए तब कैप्टन आके कहे मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ही जिता सकते हो, तुम में काबिलियत है, तुम कर सकते हो और तुम ही हमें मैच जिताओगे, ये सुनने के बाद कैसा लगेगा प्लेयर को, कैसा लगेगा? तो कैसा एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, सपोर्टिंग एटीट्यूड, दूसरे को सहयोग देने का एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि उसे नीचे गिराने का। यदि एक बच्चे के मार्क्स कम आते हैं वो घर पहुंचता है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर। पहले मार्क्स का मैं डरा हुआ है, घर आते उस वक्त क्या चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए या डांट चाहिए? उस वक्त उसको सपोर्ट चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे सभी खिलाड़ी मैदान के अंदर जब भी जाएंगे, यदि किसी से गलती होती है, डांट की बजाय क्या देंगे उसको? डांट की बजाय क्या देंगे? सपोर्ट। एक सवाल आपसे, मैं जो बोल रहा हूं उसके सबसे नजदीक कान किसका है? मैं जो बोल रहा हूं सबसे नजदीक कान किसका है? मेरा। उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? जो बोल रहा है, जो बोल रहा है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस पर पड़ता है जो व्यक्ति उस बात को बोल रहा है। यदि प्लेयर, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर दूसरे व्यक्ति को डिमोरलाइज करता है, ऐसी बात बोलता है जिससे उसका एनर्जी लेवल कम होता है, उससे पहले जो बात बोली, जो बोल रहा है, उसका खुद का एनर्जी लेवल लो हो जाता है। इसलिए, और यदि प्लेयर सामने वाले को एनर्जेटिक बात बोलता है, उसका मोरल बूस्ट करने वाली बात बोलता है, तो पहले एनर्जी लेवल किसका बूस्ट हो जाएगा? जो बोल रहा है। इसलिए आप नियम बनाए, कभी भी जिस ग्रुप में आप हैं, जिस टीम के साथ हैं, एक बात याद कर लें, खेल के दौरान कभी भी डांट नहीं सकते, एनर्जी लेवल लो नहीं कर सकते, आपको बूस्ट ही करना है, उसको आगे ही लेके जाना है। तैयार हैं इसके लिए जी? रेडी फॉर दिस? पहली बात, जेलसी हमेशा के लिए समाप्त। जो आगे बढ़ रहा है उसको देखकर आगे बढ़ना है। एंड सेकेंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज, दूसरों को हमेशा एनकरेज करना है, आगे बढ़ने के लिए ताकत देनी है। एक बहुत अच्छी लाइन यहां लिखी हुई है, एक तलवार की कीमत होती है उसकी धार से, और एक इंसान की कीमत होती है उसके व्यवहार से। तो टीम के अंदर बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा माहौल बहुत जरूरी है, और दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। अब्दुल कलाम जी की एक बहुत सुंदर बात, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा, हर मुसीबत मुसीबत नहीं है, आपको आगे बढ़ाने का एक जरिया है, एक मीडियम है जो आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालती है। इसलिए मुसीबत से डरे नहीं, डटकर उनका सामना करें। हम तो पत्थर थे, अपना हुनर मालूम ना था, मुसीबतों ने तराशा और हीरा बना दिया। मुसीबतों ने तराशा और हीरा बना दिया। एक ये रियल घटना है, एक व्यक्ति कोस्ट गार्ड करीब समुद्र के अंदर स्विमिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और कुछ घंटों से लगातार स्विमिंग कर रहे थे। कुछ घंटे स्विमिंग के बाद शरीर में थकावट आ जाती है, और इस व्यक्ति ने यह कहा, करीब एक शार्क हमारी तरफ आ रही थी, जब वो शार्क केवल करीब 3-4 मीटर दूर थी, तब हमें एहसास हुआ कि शार्क हमारी तरफ आ रही है। शार्क आप सभी जानते हैं जी, आप सभी जानते हैं, और ये सोच रहा है कि मैं तो पहले से इतनी देर से दौड़ स्विमिंग कर रहा हूं, मैं कैसे दौड़ चलूंगा, मैं कैसे स्विमिंग करूंगा, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए मैंने तैरना शुरू किया, और मुझे मालूम नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आई, मैं इतनी तेजी से तैरा, इतना तेज तैरा, और मैं करीब 2-2.5 किलोमीटर तक तैरता रहा, लेकिन शार्क मुझे पकड़ नहीं पाई। उसके बाद एक लाइफ बोट आई, मैं उस लाइफ बोट में बैठा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतना तैरने के बाद मैं इतनी स्पीड से फिर से तैर सकता हूं। कहने का भाव यह है कि हमें इसको अपनी ताकत का नहीं पता था, कितना तेज तैर सकता है, इतना आगे जा सकता है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आई, शार्क आई, क्या मालूम पड़ा, ताकत हम सब के अंदर है, लेकिन हम उस ताकत को जानते नहीं। हमें हमारी ताकत से कौन मिलाता है, कौन हमें अपनी ताकत से वाकिफ कराता है? हमारी प्रॉब्लम्स, मुसीबतें जब वो आती हैं, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जब धन आता है तो अंदर छुपे हुए अवगुण बाहर निकलते हैं, और जब मुसीबत आती है तो अंदर छुपे हुए गुण ताकत बाहर आती है। एक शेयर, 4 लाइनें मेरे साथ, आप, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ शेयर करें। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, रुककर पीछे जाने वालों को कुछ नहीं मिलता, और आगे बढ़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, वालों के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। नेक्स्ट इज कट ऑल बैरियर्स, सब बंधनों को तोड़ दें, कट कर दें। क्या आपको लग रहा है कि कोई बंधन, किसी बंधन से आप बंधे हुए हैं? लग रहा है कोई बंधन इससे हम बंधे हुए हैं? हमने बहुत बंधनों में अपने आप को बांध रखा है। सत्य तो ये है, जैसे ये पिक्चर, ये फोटो मैं दिखाने जा रहा हूं, अक्सर हर प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, बहुत सुंदर दिखाया है। इतना बड़ा हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। इसको देखकर क्या सवाल मन में आता है, इतना बड़ा हाथी जो इतने सैकड़ों किलो वजन उठा सकता है, एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, इसको देखकर क्या मन में आता है? किसको तोड़कर, तोड़ क्यों नहीं, तोड़ के चला क्यों नहीं जाता? जिनको तो ये सवाल का जवाब आता है उनके लिए नहीं है, जो नए हैं उनके लिए सवाल है कि ये इतना बड़ा हाथी, इतना ताकतवर हाथी जो पेड़ों को गिरा सकता है, इस पतली सी रस्सी को क्यों नहीं तोड़ सकता? उनके लिए सवाल है। क्या जवाब है, कौन जवाब देगा इसका? उसको मेंटली पता नहीं बना हुआ, और जवाब दीजिए कुछ ठीक है, उसको दिमाग में क्या बना हुआ हूं? इसका जवाब यह है कि जब यह छोटा था तब उसको ऐसी ही रस्सी से बांधा गया था, इसने तब इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की और रस्सी को तोड़ नहीं सका, बहुत कोशिश की तोड़ नहीं सका, तो दिमाग में क्या बात बैठ गई कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता बस। और ये बड़े होकर भी इसके अंदर ये बात बैठी हुई है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। सोचिए, इतना ताकतवर जानवर, दुनिया का धरती के ऊपर सबसे ताकतवर जानवर सिर्फ इस बात से गुलाम है, इतनी एक बात उसके दिमाग में बैठी है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। यदि उसको जाकर बता दिया जाए कि रस्सी तो क्या, आप तो लोहे की चेन भी तोड़ सकते हो, तो क्या कर सकता है वो? वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये बात उसके दिमाग में बैठ गई है। इसी तरीके से हम सबके दिमाग में अक्सर ये बात बैठ जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो जो बहुत मेहनत करते हैं वही कर सकते हैं, मैं कर ही नहीं सकता। इसी बात ने हम सबको बांध दिया है। और इस बैरियर को कब ब्रेक करेंगे, इस बैरियर को कब ब्रेक करेंगे, किस दिन ब्रेक करेंगे? आज से, अभी से क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या किया जा सकता है? हैं जी, सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो मेरे पीछे आंखें बंद करके ताकत से बोलेंगे, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। एक और चीज दिखाई है, घोड़ा बंधा हुआ है सिर्फ एक कुर्सी से, उसकी लगाम वहां बांध दी है, वो हिल नहीं रहा है क्योंकि वो भी बंधा है, वो भी दिमाग से बंधन से बंधा हुआ है। इसलिए अपने बैरियर्स को ब्रेक करना है। ये माइकल फेलप्स दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति, 18 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। एक सवाल आपसे, क्या इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया जा सकता है? 18 गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, टोटल 22 मेडल्स, क्या इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया जा सकता है? किया जा सकता है जी, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? हाथ तो खड़ा करेंगे, कौन कर सकता है? यस आई कैन डू इट, आई कैन। क्या तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया जा सकता है? कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जी। ये एक बात याद रखें, यदि आप कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, भले टैलेंट नहीं हो लेकिन आपके अंदर विश्वास है, टैलेंट नहीं है तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टैलेंट होते हुए भी आपने ये कह दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो टैलेंट होते हुए भी उस चीज को नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हर चीज के लिए, हर खेल के लिए, हर रिकॉर्ड के लिए कहेंगे कि हाँ मैं इस लक्ष्य को हासिल, इस लक्ष्य को हासिल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बम्बल बी है, ये इसकी एक्चुअल फोटो है। बम्बल बी का जो डिजाइन है वो ऐसा बना हुआ है, वैज्ञानिक कहते हैं इसके पंख छोटे हैं, इसका भार ज्यादा है, और इसके डिजाइन के अकॉर्डिंग इसके पंख इसको उड़ा ही नहीं सकते हैं, इसके पंख इतने छोटे हैं, और इसका जो डिजाइन है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स ये उड़ ही नहीं सकती है वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार। लेकिन ये बात किसको नहीं पता है, ये किसको नहीं पता है, ये इसको नहीं पता है, इसलिए ये उड़ जाती है। यदि हम बच्चों को, खिलाड़ियों को मना करना बंद कर दें, ये नहीं करो, आप ये नहीं कर सकते, उनको एनकरेज करें आगे जाने के लिए, वो दुनिया की हर सीमा को पार कर सकते हैं, हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनको हम ही बांध देते हैं, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं करना। इसलिए अपने अंदर उस ताकत को, जज्बे को कायम रखेंगे, हर चीज हासिल की जा सकती है। और बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, जो चीज हम सोच सकते हैं उस चीज को कर सकते हैं, जो चीज सोच सकते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। सुंदर सा वीडियो। अपने हाथ को ऐसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, पीछे तरफ टर्न करेंगे, पीछे की तरफ, और ऐसे करेंगे, वाह मैं, वाह मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। मुश्किल हालात से कह दो हमसे ना उलझें, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, हर हाल में जीने की कसम खाई है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, मेरे पीछे बोलिए, ख्वाहिशों से नहीं गिरते, कर्मों से, कर्म की साख को हिलाना होगा, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, खुद जलाना होगा। क्रिएट पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जिस चीज की कल्पना करते हैं उसके नजदीक पहुंचते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप इमेजिन कर रहे हैं आप उसके नजदीक जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य को इमेजिन करना, देखना कि मैं वहां पहुंच चुका हूं, वहां पहुंच रहा हूं। बहुत से वैज्ञानिक तथ्य हमारे पास हैं। स्टडी ऑफ मॉरन इन 1996, अकॉर्डिंग टू मॉरन, इन्होंने करीब जितने कोचिज पे इंटरव्यू किया, जिनका सर्वे किया, 90% कोचिज ने ये कहा कि मेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, किसी भी खेल के लिए, विजय के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और रशिया ने बास्केटबॉल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, फोर ग्रुप्स बनाए उन्हें, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर। चार ग्रुप बनाने के बाद पहले ग्रुप को उन्होंने 100% फिजिकल ट्रेनिंग दी, 100% फिजिकल। सेकंड ग्रुप को 75% फिजिकल ट्रेनिंग एंड 25% मेंटल ट्रेनिंग। थर्ड ग्रुप को 50% फिजिकल ट्रेनिंग एंड 50% मेंटल ट्रेनिंग। और लास्ट ग्रुप को 25% फिजिकल ट्रेनिंग एंड 75% मेंटल ट्रेनिंग। और जब कुछ महीने की प्रैक्टिस के बाद रिजल्ट देखा तो रिजल्ट ये सामने आया, जिन्होंने 75% मेंटल ट्रेनिंग की, 25% फिजिकल ट्रेनिंग की, उनके रिजल्ट सबसे बढ़िया रहे, सबसे बेहतरीन रहे। इसलिए जैसा आज सुबह वेलडिक्ट्री सेशन में भी कह रहे थे कि आज सभी कोचेज, सभी प्लेयर्स अपना ध्यान मेंटल ट्रेनिंग की तरफ भी दे रहे हैं, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ओलंपिक में गोल्ड जीते हैं, आगे पहुंचते हैं, सभी लोग, सभी खिलाड़ी मेंटल ट्रेनिंग करते हैं। आज सुबह बताया जा रहा था कि तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, वो प्लेयर भी गेम से पहले अपने मन को ट्रेनिंग करते हैं, उस चीज की कल्पना करते हैं जो जिंदगी में चाहते हैं। माइकल जॉर्डन, दुनिया के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी, ये भी हर गेम से पहले अपने आप की कल्पना करते हैं कि मैं वो गेम खेल रहा हूं और हर मेरी बॉल बास्केट में जा रही है और मैं गेम जीत चुका हूं। और ये एक ब्रेन का पिक्चर है, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर एंड दिस इज द मेंटल पिक्चर। इसमें ये दिखाया हुआ है, आप एक छोटा एक्सरसाइज करते हैं, इस हाथ को ऐसे उठाइए, फिंगर्स को खोलिए, बंद कीजिए, फिर खोलिए, बंद कीजिए, हाथ वापस ले आए। जब हाथ को ऐसे किया तो यहां से सिग्नल हाथ तक पहुंचा, फिंगर्स को खोला, बंद किया, सारा सिग्नल कहां से फ्लो कर रहा था? ब्रेन से। दो बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, एक बार एक्चुअल में किया गया, दूसरी बार सिर्फ इमेजिन किया कि हाथ मेरा यहां पहुंच चुका है, फिंगर्स खुली या बंद हुई है, खोला नहीं गया, सिर्फ इमेजिन किया गया। दोनों केस के अंदर ब्रेन की फोटो ली गई और क्या देखा गया, ब्रेन के अंदर 95% सिमिलरिटी थी, ऑलमोस्ट ब्रेन सेम तरीके से काम कर रहा था। यानी कि आप जब कल्पना कर रहे होते हैं आप सत्य के बहुत नजदीक होते हैं। जब हम कल्पना कर रहे होते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, सत्यता के बहुत नजदीक होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, मुझे एक छोटी सी कहानी भी याद आती है, रियल वन। एक व्यक्ति जो गोल्फ खेलता था, किसी कारणवश उसे जेल हुई, 7 साल की कैद हुई। 7 साल के बाद जब वो जेल से बाहर आया, फिर से गोल्फ खेलना शुरू किया, जितना अच्छा गोल्फ पहले खेल रहा था लगभग उतना ही अच्छा गोल्फ वो 7 साल के बाद भी खेल रहा था। उनके दोस्त बहुत हैरान थे, भाई 7 साल के बाद तुम गोल्फ खेल रहे हो, तब भी पहले से अच्छा खेल रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तो उस भाई ने कहा जो जेल से बाहर आया था कि मैं जेल में भी गोल्फ खेलता था, मैं जेल में भी गोल्फ खेलता था। तो सभी लोग हैरान हो गए, तुम ऐसी किस जेल में थे जहां खेलने के लिए गोल्फ मिलता था? जेल में तो सिर्फ रोटी पानी मिलता है, आपको खेलने के लिए गोल्फ मिला, ऐसी कौन सी जेल थी? उसने क्या कहा कि खेलने के लिए एक्चुअल गोल्फ नहीं था, मैं कहां गोल्फ खेलता था, मैं फ्री रहता था, तो मन से पिक्चराइज करके मैं डेली 5-5 घंटे गोल्फ खेलता था, मैंने ऐसे वक्त गुजारा। और देखिए उसका रिजल्ट, बॉडी वैसी की वैसी ट्रेन रही। और एक बुक में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को ट्रेडमिल के ऊपर कहा कि आप दौड़िए, यदि व्यक्ति ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहा है, आधा घंटा दौड़ने के बाद क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ने के बाद? स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं। आधा घंटा दौड़ने के बाद उसके बॉडी के चेंजेस को नोट किया गया और उस व्यक्ति को फिर कहा गया कि आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद कहा आप अब इमेजिन कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं। और ये देखा गया कि उनकी बॉडी में फिर से वैसे ही चेंजेस आने शुरू हो गए जब वो एक्चुअल में दौड़ रहे थे। तो यही एक्सपेरिमेंट हम 2 मिनट के लिए अपने साथ करेंगे, खुद को फील कराएंगे। हम आंखें बंद कर लीजिए, आईज क्लोज कर लेंगे, बैक की सपोर्ट को छोड़ देंगे और इमेजिन करेंगे अपने आप को जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपनों को, अपने को उसके करीब देखिए। जो चाहते हैं कि मैं चलना चाहता हूं वो तेजी से चलना महसूस करें, जो चाहते हैं कि मुझे गोल्ड मेडल मिले वो अपने आप को देखें कि उनके गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। अपने आप को हर गेम में, खेल में जीतते हुए देखिए, उस मैदान के ऊपर अपने आप को जीतते हुए खेलते हुए देखिए। हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है और आप अपना बेहतरीन बेहतरीन खेल खेल रहे हैं। आप जितना बेहतरीन सोचते हैं उतना बेहतरीन खेल पा रहे हैं। जो शॉट को जैसे खेलना चाहते हैं, बॉल को जहां फेंकना चाहते हैं, शटल को जहां भेजना चाहते हैं, हर चीज वैसे ही चल रहा है जैसा आप चाहते हैं और आप जीत रहे हैं। एक और बड़े खिलाड़ी से खेल रहे हैं, उससे भी जीत चुके हैं, और बड़े खिलाड़ी से खेल रहे हैं, उससे भी जीत चुके हैं, और ऐसा करते सबसे आगे की पोजीशन, इंडिया की टॉप पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। और अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, हम में से कौन कौन कर पा रहा था ये? मैं समझता हूं बहुत इजी है, लगभग सभी कर पा रहे थे। किनको बहुत आनंद आया ऐसा करते हुए? सभी को बहुत आनंद आया जी, क्लैपिंग करेंगे अपने लिए। और लॉ क्या कहता है, जितना इमेजिन करेंगे उतना इसके करीब पहुंचेंगे। और इसका समय बता देता हूं कब इसको करना सबसे बेहतरीन होता है। जैसे ही नींद खुलती है सुबह, सुबह उठते ही 5 मिनट जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। उठते ही इमेजिन करें, अपने लक्ष्य को देखें और देखें कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, उसे अचीव कर चुके हैं उस लक्ष्य को। और दूसरा वक्त है सोने से पहले 5 मिनट, फिर अपने आप को इमेजिन करें उसी प्रोसेस के अंदर अपने लक्ष्य को जीतते हुए, लक्ष्य को प्राप्त करते हुए। कौन कौन कर सकता है जी, कौन कौन करेगा? बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इज एनहांस योर पावर, अपनी शक्ति को बढ़ाएं। ये तो सभी जानते हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए तो रोटी खाना जरूरी है, दूध पीना जरूरी है, बादाम खाने जरूरी है, तो उसकी क्या जरूरत है? किसकी बात की जा रही है ये किसकी बात की जा रही है? ये बॉडी की बात नहीं की जा रही है, मेंटल पावर की बात की जा रही है, मन की शक्ति की बात की जा रही है। मन की शक्ति कैसे बढ़ाएं और मन की शक्ति कम कैसे होती है, इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप एक चीज जानते हैं, ओवर ईटिंग यानी कि ज्यादा खाना, ये एक बीमारी है, इट इज अ डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज। ज्यादा खाना डिजीज, ओवर ईटिंग की तरह एक और डिजीज है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, छोटी सी चीज के ऊपर किसी ने कुछ कह दिया, बहुत लंबा लंबा सोचना, ये बॉडी की, माइंड की बेअंत एनर्जी को बॉडी से खींच लेता है। हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं, कितने प्लेयर से मिला हूं मैं, प्लेयर अगर किसी कोच ने या कैप्टन ने कुछ कह दिया, वो प्लेयर सोचता रहता है, और बाद में प्लेयर्स तो ये कहते हैं मन ही नहीं करता गेम खेलने का, मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। ताकत बॉडी के अंदर है, क्यों नहीं काम मन कर रहा? क्योंकि मन से क्या सोच लिया है, नेगेटिव वेस्ट सोच लिया है। यदि आप मार्केट में गए कोई सामान खरीदने के लिए, आपने सामान खरीदा और आप घर आ गए और बहुत थके हुए, पूरा दिन आपने काम किया, शाम को मार्केट सामान खरीद के इसी घर पहुंचे, घर पे आते ही बेड पे लेट गए और आपने कहा मैं बहुत थका हुआ, बिल्कुल हिम्मत नहीं उठने की, प्लीज पंखा भी आप ही ऑन कर दीजिए, घर के मेंबर को बुलाया, पंखा ऑन कर दीजिए और पानी मुझे बेड पे दे दीजिए, उठने इतनी हिम्मत नहीं है कि उठ के पानी पी सकूं। ऐसा कभी होता है हमारे साथ? कभी बहुत थक जाते हैं। अभी आपको क्या याद आया, दुकानदार को तो मैंने 1000 रुपए का नोट दिया था, सामान तो 100 रुपए का लिया है और 900 रुपए तो दुकानदार के पास ही रह गए हैं, अभी कितनी देर लगेगी उठने में, अभी कितनी देर में उठ जाएंगे? अभी तो बोल रहे थे कि उठ नहीं सकते हैं, पानी भी यहीं पिला दीजिए, पंखा भी आप ही ऑन कर दीजिए, और अभी 1 मिनट में उठकर कहां पहुंचेंगे हम दुकानदार से? ये ताकत कहां से पैदा हो रही है? ताकत कहां से पैदा हो रही है? मन से। इसलिए मन दुनिया की सबसे ताकत और सबसे सुंदर चीज है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, वो है अच्छे विचारों से। देखिए विवेकानंद ने कितना सुंदर बताया मन के बारे में, जैसा आप विचार करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे, कैपेबल बोलेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो आप वैसे बन जाएंगे। और शिवानी बहन ने एक बहुत सुंदर लाइन बताई इसके ऊपर, आप इसको नोट कर सकते हैं, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग ग्रोज, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग ग्रोज, जहां हमारा ध्यान चला गया साथ साथ ऊर्जा फ्लो करनी शुरू कर देती है और वही चीज बढ़नी शुरू हो जाती है। वही चीज अभी ये मालूम पड़ता है कि सामने वाली टीम तो फौरन से कोचिंग लेकर आई है और इस टीम फलानी फलानी टीम को हरा चुकी है, बहुत कैपेबल है, बहुत ताकतवर है। अभी मन में पहला थॉट क्या आएगा कि सामने वाली टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत जगह से कोचिंग लेके आई है और हमने तो यही कोचिंग ली है, यही ट्रेनिंग ली है और वो तो इस टीम को वो हरा चुकी है, इतने प्राइज विन कर चुकी है और हमारा मुकाबला इतनी बड़ी टीम से है। ये सुनते ही पहला थॉट क्या आएगा, पहला थॉट क्या आएगा, फियर, हम तो जीत नहीं सकते। और एक थॉट आया, जीत नहीं सकते, एनर्जी फ्लो करनी शुरू कर देती है। हम किस तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं, किस तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार की तरफ। और हार की तरफ कौन ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है, अपने आप को खुद ले जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को ताकत देना, अपनी ताकत को बढ़ाना। तैयार हैं इसके लिए जी, आज अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा सोचेंगे। यदि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सामने वाली टीम के बारे में बहुत बड़ा मालूम पड़े कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी प्राइज विन कर चुकी है, तब क्या थॉट लेके आएंगे अपने मन में, क्या लेके आएंगे, उस टीम पे अपना नाम रख देंगे। और बताइए कुछ, और मैं जो बताने जा रहा हूं उसको प्लीज ध्यान देंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। और जिन जिन प्लेयर्स ने किया उन्होंने ये कहा कि इतनी ताकत हमारे शरीर में आ गई, हमने गेम को जीत लिया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिर्फ ये वंडरफुल थॉट्स मैं चाहूंगा अपनी लाइफ में आप नोट कर लें और जरूर उनको बोलें। हम उन थॉट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आई एम फुल ऑफ पावर, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम ऑलवेज ए विक्टर, I am full of energy, I am always successful, I am the best, I have immense potential, I am calm and relaxed in every situation, I am full of enthusiasm। अभी एक सुंदर सी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट चाहिए। एक निवेदन है कि क्या आप अपनी सीट से थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं। अच्छा, बलराम भाई ने एक्सरसाइज कुछ कराई थी, की थी आपने, हम उसको फिर से 2 मिनट के लिए इसको रिपीट करेंगे, रिवाइज भी हो जाएगी और महसूस होगा इसकी ताकत का। आंखें बंद करके आपको बोलना है आप कहां कहां से आए हैं, जहां से भी आए हैं ये आवाज हमें वहां तक पहुंचानी है। क्या ये हो सकता है, क्या कर सकते हैं ये, जहां से आए हैं वहां तक हमें ये आवाज पहुंचानी है पूरी ताकत से। और हाथों को ऐसे कर ऐसे एक्सपेंड करना है ताकत से, कोशिश करना कि साथ वाले पर ऊर्जा ना पहुंचे, साथ वाले का भी ध्यान रखना है। दोनों हाथ, मेरे हाथ में एक हाथ में माइक है इसलिए मैंने एक हाथ से किया, आपको दोनों हाथ से करना है। आंखें बंद करके मेरे साथ बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम ऑलवेज ए विक्टर, आई एम ऑलवेज सक्सेसफुल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम द बेस्ट, I am full of power, I am full of enthusiasm, I am the best, I am full of confidence, I am full of energy, I am always happy, I am very lucky, I am very special, I am very important, I am very special। मेरे अंदर असीम ताकत है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं सदा विजयी हूं, सदा सफल हूं, सदा खुश हूं, मेरी सोच बेहतरीन है, मेरा सबसे रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरा सबसे बहुत प्यार है, मैं सदा विजयी हूँ, सदा सफल हूँ, असीम शक्ति का मालिक हूँ, मुझ में असीम काबिलियत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम में से किन किन को ताकत महसूस हो रही है? ताकत महसूस हो रही है जी, बॉडी में या मन में? मन में, मन में। इसलिए ये लाइंस, ये वर्ड्स आप याद कर लें और गेम से पहले इनको सोचना है, डेली भी सोचना है और गेम से पहले इन लाइंस को, इन वर्ड्स को लाइफ में सोचना है। 5 मिनट, 10 मिनट, किसी से कोई बात नहीं, बस इन वर्ड्स को, इन लाइंस को चैंटिंग करते रहें कि मैं कर सकता हूं, मुझ में काबिलियत है, मुझ में आत्मविश्वास है, और आप देखिए आपका एनर्जी लेवल एकदम आसमान को छुएगा। नेक्स्ट इज स्टिक टू रेगुलर प्रैक्टिस, कि लगातार प्रैक्टिस करते रहें, छोड़े नहीं, हिम्मत नहीं हारे। फाइट टिल एंड, बहुत अच्छी कोटेशन यहां, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। विजेता वो नहीं होते जो कभी नहीं हारते, विजेता तो वो होते हैं जो कभी पीछे नहीं हटते, जो मरते दम तक, आखिरी सांस तक फाइट करते हैं, फाइट टिल एंड। कभी भी मेहनत करते हुए कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मालूम नहीं हम खजाने के कितना करीब हैं। जब आपने छोड़ा, अंदाजा नहीं सफलता कितनी करीब थी। इसलिए याद रखें, आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक फाइट करनी है। चार लाइनें मैं चाहूंगा मेरे साथ बोलें। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल को अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना, खुद की ताकत को बढ़ाना। विवेकानंद ने बहुत अच्छी लाइन कही, कॉन्कर योर सेल्फ एंड द होल यूनिवर्स इज यूअर्स। खुद को जीतना है, खुद में किसको जीतना है? मन को जीतना है, और मन में भी किस चीज को जीतना है? मन के नेगेटिव थॉट्स को, कि बस नेगेटिव थॉट्स को जीतना है, और जिंदगी में चले तो बस पॉजिटिव थॉट्स। यदि ये चीज हासिल कर ली तो पूरी दुनिया जीत ली हमने, अपने आप को जीतना है और दुनिया जीत ली। एंगर, एंगर और एंगर प्लस डी बन जाए तो क्या बन जाता है जी? डेंजर। मैं जानना चाहता हूं यहां पर हम में से कौन खिलाड़ी, कौन सज्जन ऐसे बैठे हैं जो क्रोध से मुक्त हैं, जो क्रोध नहीं करते हैं? लंबा हाथ खड़ा करेंगे जी, सभी को प्लीज लंबा हाथ करेंगे, लंबा हाथ खड़ा करें, जिनको गुस्सा नहीं आता जी। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, ताली बजाएंगी, जो बहनें जिनके हाथ खड़े हैं जी, ताली बजाएंगे जोर से, थोड़ी सी ताली, जोर से ताली बजाएंगे जी, जोर से। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा शत्रु उसका कॉम्पिटिटर नहीं होता। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? गुस्सा, उसका एंगर। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह बताया है, हम जो भी सोचते हैं चाहे वो सही है या गलत है, जैसे ही थॉट यहां से जनरेट होता है, यहां पर केमिकल जनरेट होता है। थॉट तो एक वेव है, लेकिन केमिकल एक मैटर है। जैसे ही थॉट पैदा हुआ, एक केमिकल बनता है, उसे कहते हैं न्यूरोपेप्टाइड, और वो केमिकल हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में चला जाता है और हमारे बॉडी के पार्ट्स को वो इफेक्ट करता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने 98 लोगों के हाथ पर कट लगाया और 8 के बाद क्या देखा, जो लोग बहुत गुस्सा करते थे उनका वो कट भरा नहीं, वो वैसा ही रहा, और जो लोग शांत रहते थे उनका वो कट भरना शुरू हो गया, हील होना शुरू हो गया। सोचिए गुस्सा क्रोध कितना नुकसान कर रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान वो हमारे माइंड को और हमारे इम्यून सिस्टम को करता है। इम्यून सिस्टम हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता है जिसे क्रोध वीक करता है। और खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होती है, फिजिकल फिटनेस, एनर्जी लेवल। और 1 का क्रोध आपकी बॉडी की कितनी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। और वैज्ञानिकों ने एक और चीज साबित की, यदि 9 हम फिजिकल वर्क करते हैं और इमेजिन जस्ट आइडिया इतनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं, यदि 9 काम किया, जस्ट हैव एन आइडिया, मान लीजिए इतनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं, और यदि कोई भी व्यक्ति 15 क्रोध करता है तब भी उतनी ही कैलोरीज बर्न कर देता है जितना 9 काम करने से बर्न होती हैं। सोचिए बॉडी की कितनी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं, कितने इतने अच्छे प्रोटीन्स, विटामिन्स, फ्रूट्स लेते हैं ताकि बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, और उसे कौन वीक कर रहा है, कौन वीक कर रहा है, किसका क्रोध, मेरा खुद का क्रोध मेरी बॉडी को वीक कर रहा है। इसलिए एंगर इज वेरी वेरी नियर टू डेंजर। और क्रोध का एक और बहुत बड़ा नुकसान, गुस्से में आने के बाद हम वो बातें कह देते हैं, हम वो फैसले ले लेते हैं जो, वो बोल देते हैं, वो कर लेते हैं जो, और जब क्रोध शांत होता है तब क्या बोलते हैं उसके बाद, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर क्रोध के अंदर आप गेम खेल रहे हैं, आपको गुस्सा आया, उसके बाद आपके डिसीजन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, आप जो करना चाहेंगे उसे गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी गेम के अंदर याद रखना है कि मुझे तो शांत रहना है। लेकिन शांत रहने का तरीका क्या है, भगवान ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है शांत रहने के लिए, दैट इज मेडिटेशन। जितना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना मन शांत रहेगा। एक बहुत बड़ी चीज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको यहां पर, यह है आत्मा, फुट ऑफ सोल। आत्मा यहां पे रहती है और यहां से पूरी बॉडी को चलाती है। आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। मैं कुछ आपको साइंटिफिक तरीके से बताना चाहता हूं, प्लीज जरूर ध्यान देंगे। सोल, दिस इज सोल। सोल की पहली फैकल्टी मन, जिसमें विचार आते हैं, जिससे हम सोचते हैं, सोचने के बाद हम दोबारा जरूर सोचते हैं, फैसला करते हैं कि ऐसा करें या ऐसा करें, कैसा किया जाए, वो हमारे लिए कार्य कर रहा है इंटेलेक्ट। एंड थर्ड इज हमारी हैबिट्स यानी कि संस्कार। सबसे पहली चीज, जैसे ही गुस्सा आता है मन के विचारों की गति तेज हो जाती है, और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं जितना मन शांत होता है उतना इंटेलेक्ट, अकल, बुद्धि ज्यादा काम करती है। आपने कभी सुना कि ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, सुना है आपने, शांत मन से काम करना चाहिए, क्यों कहते हैं, जल्दी नहीं करना, जैसे ही जल्दी करते हैं ये गति फास्ट जाती है और बुद्धि के डिसीजन गलत होने शुरू रहते हैं, और जितना मन शांत रहता है उतने ये डिसीजन अच्छे रहते हैं। इसलिए हम में से कौन कौन चाहता है कि बुद्धि के निर्णय सही रहे, सभी चाहते हैं जी। और उसका फॉर्मूला क्या बता दिया भगवान ने हमारे को, वेरी सिंपल, ये अच्छा करने के लिए क्या मार्केट में कोई मेडिसिन है जिसको खा ले बुद्धि अच्छे फैसले करने शुरू कर दे, देयर इज नो मेडिसिन, देयर इज ओनली 1 मेडिसिन व्हिच गॉड हैज गिवन, दैट इज मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करके हम मन को शांत कर सकते हैं, और जितना मन शांत रहेगा उतना इंटेलेक्ट बढ़िया डिसीजन लेगा। इसलिए आज से जैसे शरीर के लिए भोजन खाना जरूरी है, भाई मैं ये बॉडी को क्या कहेंगे, भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बूस्ट, हॉर्लिक्स, ये किसको एनर्जी देता है, इट इज फॉर बॉडी। और ताकत चाहिए माइंड के लिए, भाई जी क्या करेंगे माइंड के लिए, ओनली वन थिंग इज अवेलेबल, दैट इज मेडिटेशन, इट इज ओनली फॉर माइंड। बट बहुत अच्छा बताया भाई जी ने कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। वो एक और अच्छा तरीका समझाने का। सो हम अभी हम प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की। अभी पीछे हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी राई स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत के अंदर, वहां बहुत अच्छी एग्जीबिशन के अंदर वहां के प्रिंसिपल सर आए, उनको दिखाया हमने GIGO यानी कि गुड इन गुड आउट। अलमारी के अंदर हमने जो सामान रखा, अलमारी खोलेंगे तो कौन सा सामान बाहर आएगा, जो रखा वही बाहर आएगा। आपने कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव से कुछ डाल दिया, जब कंप्यूटर ओपन करेंगे तो क्या सामान बाहर आएगा, वही आएगा ना जो डाला है। डस्टबिन के अंदर हमने कुछ कचरा डाल दिया, जब डस्टबिन खाली करेंगे तो क्या बाहर आएगा। बहुत क्लियर है ना जी, इट इज वेरी क्लियर। ऐसे ही ये कंप्यूटर है, ये एक बॉक्स है, यहां से क्या बाहर आएगा, यहां से क्या बाहर आएगा, जो जाएगा। और आप तीन दिन से कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सुन रहे हैं आप, और मैं यहां घूम रहा था, एक लोग आपस में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, हमने ये सीखा, ये सुना, लोग क्या डिस्कस कर रहे थे जो यहां पर सीख रहे हैं। यदि मैं पिक्चर थिएटर से जब देखकर थे मूवी देखकर बाहर निकलते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं, पिक्चर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है। तो कितनी बढ़िया बात भगवान यहां सिखा रहा है, यदि हम चाहते हैं कि आज आउटपुट ठीक नहीं है, यदि हम आउटपुट अच्छा करना चाहते हैं तो क्या अच्छा कर लें, बस कितना अच्छा है जी, हम चाहते हैं आउटपुट अच्छी हो जाए तो क्या अच्छा कर लें, इनपुट अच्छा अंदर अच्छा अच्छा जाए। अब अच्छा मिलेगा कहां से, अच्छा मिलेगा कहां से, उसकी जगह भगवान ने दे दी है ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स ऑलमोस्ट पूरे भारत के हर शहर हर गांव में है। 15 मिनट 20 मिनट वहां जाकर डेली प्रैक्टिस करें मेडिटेशन की, अच्छी बातें सुने, जब रोज अंदर अच्छा जाएगा तो डेली यहां से बाहर भी अच्छा आएगा। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज सुबह वेलडिक्ट सेक्शन के अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई जा रही थी कि जो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं वो व्यवहार से भी अच्छे हैं, इसलिए हमें खिलाड़ी तो अच्छा बनना ही है लेकिन व्यवहार के साथ भी एक अच्छा खिलाड़ी बनना है। इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे। और ये ह्यूमन ऑरा, ये कितना डिफरेंस पड़ता है बिफोर मेडिटेशन, दिस इज द ह्यूमन ऑरा एंड दिस इज ह्यूमन ऑरा आफ्टर मेडिटेशन, पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। तो आपसे निवेदन करेंगे, समय भी हो रहा है कि हम डेली आपसे निवेदन करेंगे कि आप डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें 15 मिनट डेली, ऑल द प्लेयर्स। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और अभी कमेंट्री से मेडिटेशन करेंगे, सभी अपनी सीट से बैठे रहें, बैक की सपोर्ट को छोड़ देंगे। आंखें बंद कर सकते हैं, अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए, कहीं कोई हलचल नहीं, पांव से नीचे उंगलियां बिल्कुल स्थिर, कमर से नीचे ये दोनों टांगे ढीली और स्थिर, हाथों की उंगलियां बाजू और कंधे सब कुछ स्थिर, अपने आप से बोलिए, खुद से बोलिए कि मेरे दोनों पांव और पांव की उंगलियां शांत शांत और शांत हो चुकी हैं, घुटनों से नीचे ये दोनों टांगें ढीली, शांत शांत और शांत हो चुकी है। कमर से नीचे ये दोनों टांगें ढीली और शांत शांत और शांत हो चुकी हैं। ये मेरे दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, उंगलियों के सिरे, कलाइयां, कोहनी, बाजू और कंधे, सब कुछ ढीले और शांत हो चुके हैं। ये रीढ़ की हड्डी, पेट की मांसपेशियां, सब कुछ ढीला और शांत शांत और शांत हो चुका है। ये मेरा मस्तिष्क, दिमाग का कोना कोना, पीछे का हिस्सा, बीच वाला और आगे वाला मस्तिष्क भी बिल्कुल शांत शांत और शांत हो चुका है। और अब अपने आप को समंदर के किनारे टहलते हुए देखिए। एक झरने के पास बैठे हुए देखिए। एक बहुत ऊंची पहाड़ी के चोटी पर अपने आप को देखिए। दोनों बाहों को उस चोटी के ऊपर खड़े होकर दोनों बाहें फैला लीजिए और बुलाइए भगवान को, शिव पिता को। देखिए आसमान से रोशनी आ रही है, शिव पिता से, परमात्मा से रोशनी आ रही है, सीधा आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर, आपके माथे पर। और आपके अंदर का सारा क्रोध, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके पांव से निकल रही है। जैसे जैसे परमात्मा की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, अंदर की सारी जलसी, क्रोध, नफरत, सारी चिंताएं आपके पांव से निकल रही हैं। और अंदर का शरीर और मस्तिष्क बिल्कुल स्वच्छ साफ हो रहा है। और अब परमात्मा से कहें, शिव पिता से कहें, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, असीम ऊर्जा का मालिक हूं, सदा विजयी हूं, विजयी हूं, विजयी हूं। परमात्मा से आती प्रकाश की किरणों को देखते रहें और कहें, मेरे अंदर असीम काबिलियत है, शक्ति है, और अब अपने आप को खेल के मैदान में देखिए, अपने आप को खेल खेलते हुए देखिए। जितना अच्छा आप सोचते हैं उतना बेहतरीन खेलते हुए देखिए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ खेलते हुए देखिए। अपने आप को जीतते हुए देखिए। कहिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया शिव पिता, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अपने हैंड्स को रब करेंगे, बॉडी में कहीं भी पेन हो वहां लगा सकते हैं, गिव्स गुड रिलीफ। थैंक यू, थैंक यू, ओम।